أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آج کامیاب فیملی، سکسیسفل فیملی کی آٹھویں نشست ہے، اس کے بعد کل آخری انشاءاللہ نشست ہوگی. کامیاب فیملی کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی تھی، جو فوکس کیا تھا وہ اس بات پر تھا کہ کامیاب فیملی کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسلام کامیاب فیملی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ کامیاب انسان، کامیاب فیملی اور کامیاب سوسائٹی. ایک سکسیسفل سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ فیملی اپنی جگہ پہ صحیح ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنی جگہ پہ صحیح ہو. یعنی پہلے ہم اپنی تربیت کریں، پھر ہم اپنی فیملی کی تربیت کریں، اور تاکہ معاشرہ اچھا ہو، کامیاب معاشرہ ہو. جو چیز اس کلاسز میں جو فوکس کیا تھا، ہم نے پہلے تین ایریا کو فوکس کیا تھا، اس میں سے آج ہم تیسرے والے ایریا کو ٹچ کریں گے. پہلی چیز ہم نے بتائی تھی وہ تھی فزیکل اسپیکٹ، جس کے ہم نے بتایا کہ ڈائٹ لینا، پلاننگ، پروگرامز، ہیلتھ، ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اپنا بھی دوسرے کا بھی. یعنی فزیکلی ہمیں فٹ ہونا ہے. فزیکل ہم فٹ ہوں گے تو ہم کام اچھا کر سکیں گے، پوٹینشیل زیادہ دے سکیں گے. لیکن خود کمزور ہوں گے تو پھر کچھ سائیکولوجیکل پریشرز بھی ہوں گی، کچھ کام میں بھی پرابلم ہوگی، اور گھر کا سسٹم خراب ہوگا، اور اس کے اور بھی ڈیٹیلز ہم نے بتائی تھی. پھر دوسری چیز ہم نے بتائی تھی ایموشنل اسٹیٹس، جس میں ہم نے مودت کی بات کی تھی کہ مودت کتنی طرح سے جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو نرچر کیا جاتا ہے، اور وہ ایک فروٹفل درخت کی مانند بنتا ہے، اور زندگی جو ہے آپ کی اسے خوشگوار ہوتی ہے، جینے میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ خود اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، گھر کے انوائرمنٹ کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں. اور تیسرا اسپیکٹ جو سوشل تھا، اس میں بہت سلائٹلی ہم نے بات کی تھی، لیکن آج اس کو تھوڑا زیادہ فوکس کریں گے کہ کیسے ایک گھر کے اندر، کیونکہ گھر کے بھی جو انوائرمنٹ ہے جس میں میاں ہے، بیوی ہے، بچے، ایک سوشل انوائرمنٹ ہے چھوٹا سا، تو اس کو کیسے ہم بہتر بنائیں گے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی طرح سے روا دوا رہے، ہماری زندگی اچھی طرح سے آگے بڑھے اور کامیابی کی طرف چلے. سب سے پہلی چیز جو مودت کے بعد آگے جانے والی چیز ہے، وہ فیملی کا ایک انوائرمنٹ ہے کہ یہ فیملی کس اسٹیٹ میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ دونوں میاں بیوی کا میوچل آبجیکٹو کیا ہے. بے عنوان ایک فیملی کے، ایک شخص کے عنوان سے ہو سکتا ہے کہ پرسنل گولز ہمارے یہ، لیکن خود فیملی کا کیا گول ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ کر اپنے ایک مقصد بنائیں، اپنا ایک آبجیکٹو بنائیں جس پہ وہ دونوں کانسنٹریٹ کر رہے ہوں مل کر. اس کے بعد فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی وہی گول ہو، یعنی میوچل گول ہو، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ اپنی پریکٹس بنا لیں، ہیبٹ بنا لیں کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ پوری فیملی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہو، اس آبجیکٹو کی طرف سب آگے حرکت کر رہے ہو، تو زندگی جو ہے وہ بامعنی اور بامقصد ہوگی، اس کا نتیجہ بھی اچھا آئے گا. یعنی زندگی میں ایک ڈائریکشن ہوگا جس پہ سب لوگ جا رہے ہوں گے. جیسے ایک عنوان مسلمان، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی اطاعت ہے، خداوند کریم کی اطاعت کرنا ہے اور کمال تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کا گول ہونا چاہیے فیملی ممبرس کا. اب اس میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، گولز کو اچیو کیسے جانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میتھڈ کیا ہونا چاہیے وہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن پرائمری چیز یہ کہ ہم سب کا ایک آبجیکٹیو ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کیا آبجیکٹیو ہے. نہ صرف پتہ ہو بلکہ وہ آبجیکٹیو ڈیفائن بھی ہو، وہ کلیئر بھی ہو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. ہاں، ہم لوگ کو ٹریول کرنا ہے، ساؤتھ جائیں گے ہم لوگ، ساؤتھ میں کہاں، کس جگہ، کس مقصد تک، کب پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، اچھا خاصا آپ اس کو بیٹھ کے ڈیفائن کریں تاکہ آپ لوگ اسی ڈائریکشن میں حرکت کریں. جب آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کریں گے کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، کوئی آگے تو نہیں چلا گیا، جس کو پل کرنا ہوگا وہ پل کرے گا، جس کو سپورٹ چاہیے ہوگی پارٹنر، لائف پارٹنر سپورٹ کرے گا، اور سب مل کر جب آپ کام کریں گے تو پھر ایک افینٹی ڈیولپ ہوگی، ایک محبت ڈیولپ ہوگی، एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्योंकि आप लोग मिल के करना चाह रहे होंगे। आपने देखा होगा अक्सर जब आप किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं या जाते हैं, वहाँ आपको कोई अपने जैसा शक्ल का आदमी मिल जाता है तो आप पूछता हो कहाँ से, किस मुल्क से, तो कहते हैं जी ओरिजिनली हम सब कॉन्टिनेंट से, तब कहते अच्छा अच्छा हम लोग भी वही से, ओरिजिनल भी हम लोग वही के, या वही लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है वो बोल रहे थे, तो आपसे एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही है कि वो उसको कामयाब बनाने के लिए दोनों का एक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर एक ईस्ट होगा एक वेस्ट होगा, एक कोई अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा होगा, कोई सिर्फ अपने अकल के पीछे भाग रहा होगा, तो मुश्किलात हो जाएगी ज़िंदगी में, नहीं हो पाएगी, वो हारमोनी नहीं पैदा होगी ज़िंदगी में। क्यों मियाँ बीवी की ज़िंदगी में हारमोनी नहीं पैदा होती, उसकी वजह ही होती है कि उनके मकसद अलग अलग होते हैं। जब एक मकसद होता है दोनों एक ही तरफ काम कॉन्सेंट्रेट होते हैं या कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे होते हैं, तो फिर खुद ब खुद रिदम बन जाता है। और ये घर के अंदर रिदम होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही ख़त्म कर देता है, उसको क्रिएट नहीं होने देता। अगर वो क्रिएट हो रही होती है तो उसको ऑर्गेनाइज कर देता है, क्योंकि घर में एक रिदम आ जाता है, उस रिदम में बहुत सारे काम खुद ब खुद होने लगते हैं। जैसे कि अक्सर कहते हैं कि जब आप कोई काम करना शुरू करें और वो काम एक मोमेंटम में आ जाए तो उसको करते रहें, वो मोमेंटम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि वैसे नहीं हो सकती। तो इसी तरह घर के अंदर अगर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू करें मिलकर, और जहाँ जहाँ हम बना सकते हैं वो बनाएं और उस पर स्टेप लें और काम करना शुरू करें मियाँ बीवी दोनों मिलकर, तो खुद ब खुद आने वाली जनरेशन जो इस घर के अंदर है वो उसी रिदम में आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक घर में आपका पहला बच्चा जब होता है दुनिया में आता है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत उस पर करनी पड़ती है, उसकी हैबिट्स बनाना, उसको टाइम टेबल बनाना, उसको एक रूटीन लाइफ बनाना। जब आप उसको बना देते हैं, उस पर काम ज़्यादा करते हैं, तो जब दूसरा बच्चा पैदा होता है वो खुद ही इसको फॉलो करता है। बच्चे बच्चों से सीखते हैं, उनकी आदतें अडॉप्ट करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ अडॉप्ट करते हैं, तो वो जो आपने बड़े बच्चे को सिखाया है छोटा बच्चा खुद ही वो सीखने लगेगा। फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन जो भी होगी सब खुद ब खुद फॉलो करना शुरू करेंगे और एक सिस्टम आपको खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पहले बच्चे पे काम नहीं किया होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, ना फिक्री इन्वेस्टमेंट, ना टाइम की इन्वेस्टमेंट, ना किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपने बच्चे पे नहीं की होगी, तो वो डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो आने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी लाइफ हमेशा फिर प्रॉब्लम का शिकार रहेगी, क्योंकि घर के अंदर कोई रिदम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हम सोशल एस्पेक्ट को, घर को अगर हम सोशल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि घर के अंदर एक मकसद मौजूद हो, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ उन सबका मौजूद हो, जिसपे सब इत्तेफाक करते हो, अग्री करते हो कि हाँ ये हम सबका ऑब्जेक्टिव है, ये हम लोग को अचीव करना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है सोसाइटी को अच्छा करने का, वरना अगर घर के अंदर सिस्टम सही नहीं होगा तो सोसाइटी के लिए खुद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ सेट कर लिया, आप लोग दोनों उस पर अग्री करते हैं, ये किसी हद तक भी एग्री करते हैं, तो दूसरी चीज़ आएगी मैनेजमेंट की, कि घर के अंदर मैनेजमेंट किसकी हो, हु इज़ द मैनेजर, कौन चलाएगा घर के निज़ाम। इस्लाम ने फाइनल अथॉरिटी मर्द को दिए, अर्रिजालु क़वामून अला निसा, कि मर्द को औरत पर बरतरी फौकियत हासिल है। ये फौकियत इस तरह से नहीं है कि हर चीज़ में मर्द को अपना फैसला चलाना है, ये इस तरह नहीं है। ये इस तरह से है कि जो बात मर्द जिस चीज़ को समझता है कि लॉजिकल और इस्लाम की निगाह में वो सही है, उसका फाइनल डिसीजन होगा। क्योंकि हमेशा एक लीडर का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, एक हादी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जैसे नबी को भेजा गया ताकि इंसानियत की हिदायत की जाए और उसको माना जाए, अब जो नबी कहेगा वो हमें मानना है। इसी तरह नबी फिर एक देखते हैं, एक मामला आता है मस्जिद के इमाम का कि जो इमामत करता है वो जैसा जैसा एक्ट करता है वैसे वैसे सबको फॉलो करना पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में फॉलोइंगशिप का। इसी तरह घर के अंदर अगर दो लीडर होंगे तो वो घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, बल्कि वो घर कभी डिस्टर्ब हो जाएगा, उस घर में जो है टेंशन रहेगी, क्योंकि कभी कोई चाहेगा फर्स्ट के बीवी चाहेगी मेरी बात मानी जाए, मियाँ चाहेगा मेरी बात मानी जाए, तो फिर कंट्रोल इशू आ जाएगा कि कंट्रोल किसका होना चाहिए घर में, होल्ड किसका होना चाहिए, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ये चाह रहे होंगे कि दोनों रूल करें और उनकी बात मानी जाए, उनका फैसला माना जाए। यानी एक चीज जो घर में मवद्दत को ख़त्म कर देती है, एक्सट्रीम लव को ख़त्म कर देती है, वो कंट्रोल इशू होता है कि पावर किसके पास है। हम लोग नॉर्मली जो जिंदगी गुजारते हैं उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि बराबर होना चाहिए, मियाँ बीवी दोनों के राइट्स बराबर है, इस्लाम ने दोनों को राइट्स दिए और दोनों के राइट बराबर हैं, तो मेरी भी चलनी चाहिए और आपकी भी चलनी चाहिए, हम दोनों की चलनी चाहिए। यहाँ दोनों की चलने और चलाने का झगड़ा नहीं है घर के अंदर, घर के अंदर कोई ऐसी फिजा ही नहीं है। घर के अंदर ये बात है कि क्या चीज़ सही है इस्लाम की निगाह में, क्या सही नहीं है। जो चीज़ इस्लाम की निगाह में सही है वो होना चाहिए। हाँ, मर्द की जिम्मेदारी ये है कि वो घर के अंदर बीवी के जो उसके राइट्स हैं वो उसके राइट्स दे, बच्चों के राइट्स उसको दे, अच्छा अखलाक से पेश आए, वो तमाम काम करें, ये उसकी जिम्मेदारी उसको है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को वो डील करे, उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह औरत की जिम्मेदारी कि वो घर के मैनेजमेंट को अच्छी तरह से चलाए, जो बजट उसको दिया जाए वो उसको उसी बजट के अंदर घर को रन करे, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, मियाँ के लिए सेंस ऑफ पीस दे। इसलिए ज़रूरी है कि जब मियाँ बीवी अगर किसी ऐसे इशू पे कि उनका डिसएग्रीमेंट हो रहा हो, कोई ऐसी बात कि जिस पे उनको लगे कि इस पे हम लोग हमेशा डिबेट करते रहते हैं आपस में, हमेशा हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ऐसे इशूज को वो टच ना करें, अवॉइड करें, कोशिश करें कि उस चीज़ को डिस्कस ना करें बल्कि उसको ख़त्म कर दें। बीवी को ये चाहिए कि अगर मियाँ किसी बात पे फोर्स कर रहा है तो वो टेम्प्रेरी तौर पे उसको कह दे, यानी दिल में वो समझती हो कि वो सही है लेकिन फिर भी कह दो कि अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप उसको एक्सपीरियंस करके देख लें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि आप घर के बड़े हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है, तो आप करना चाहते हैं आप उस पर अमल करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि नहीं वही होगा जो मैं चाहती हूँ, इससे घर ख़राब हो जाएगा, इससे घर डिस्टर्ब हो जाएगा और रिलेशनशिप ख़राब होती चली जाएगी। क्योंकि आदीस की रोशनी में इस्लाम जो फैला है, इस्लाम जो स्प्रेड हुआ है पूरी दुनिया में, वो इस तरह से हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए दीन को फैलाया और कभी भी किसी से जर बहस नहीं किया कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और आपको मानना होगा। नहीं, नबी ने कहा कि भाई देखो ये बात है, ये हक है, आप मानेंगे आपको फ़ायदा है, आप नहीं मानेंगे आपको नुकसान है।